नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुँच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,259 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। श्रीलंका ने भोजन अवकाश तक पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।